हेलो दोस्तों, इस हॉट कहानी की नायिका दीप्ति भाभी हैं। 32 वर्षीय खूबसूरत विवाहिता, नियमित योगा और संयमित दिनचर्या के अलावा उनका धूप सा उजला गोरा रंग हर निहारने वाले की आंखों में ठंडक दे देता है। दीप्ति भाभी का कद 5 फुट 5 इंच है और उनके घने हल्के भूरे से गेसु लहराकर कमर को चूमते हैं। भरे हुए होठ, माथे पर बिंदी, गहरी काली आंखें, साड़ी में झूलती हुई उनकी कमर, उनकी कमनीय काया जैसे पहाड़ों पर रस्ते होते हैं। ऐसी मस्त माल हैं दीप्ति भाभी। अब आगे की कहानी दीप्ति भाभी से ही सुनिए। मेरा नाम दीप्ति है, मैं अपने पति के साथ भोपाल में रहती हूँ। मैंने बीएड किया है और 3 साल से घर के पास के ही स्कूल में एक नर्सरी की कक्षा को पढ़ाती हूँ। रूढ़िवादी परिवार होने के कारण मेरी शिक्षा पहले गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज में ही हुई। घर वालों ने कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होते ही मेरी शादी हमारी जाति के ही एक मेहनती लड़के से तय कर दी और बीते 14 सालों में उनका ये फैसला सही भी साबित हुआ। मुझे इस बात का कभी मलाल नहीं रहा कि मेरे पति ही मेरे पहले और आखिरी प्रेमी थे। स्कूल में मेरी सहकर्मियों 25 से 40 वर्ष के उम्र की बीच की होने के कारण उनके संग हंसी मजाक चलता रहता था। जिनकी शादी नहीं हुई थी उनके बॉयफ्रेंड थे, जिनकी हुई थी उनके रस भरे इतिहास और वर्तमान में पतियों के किस्से गाये बगाहे निकल ही आते थे। सबसे मजाक का शिकार मैं बनती थी क्योंकि सबको इस बात का अचंभा होता था कि खूबसूरत होने के बावजूद मैंने बस मेरे पति के साथ ही दैहिक सुख भोगा। खासकर शोभा, जिसकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, मेरा बहुत मजाक उड़ाती। मैं शोभा को कुछ कह नहीं पाती क्योंकि एक तो वो बहुत प्यारी थी और दूसरी बात ये कि उसकी शादी उसी परिवार में हुई थी जो हमारे स्कूल के मालिक थे। शोभा के पति के बहुत व्यापार हैं, लेकिन शोभा को स्कूल संभालने में ही दिलचस्पी थी। शादी से पहले उसका प्रेम एक फौजी से था जिसके किस्से वो मुझे सुनाती रहती थी। इतने मज़ेदार, लेकिन मैं तो अपने जीवन में खुश थी। एक दिन जब मैं स्टाफ रूम में कुछ काम कर रही थी, मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। जब मैंने आंखों की कोर से देखा तो पाया कि शोभा के ऑफिस के दरवाजे के पास एक सांवला सा अच्छी कदकाठी का जवान लड़का दीवार के सहारे खड़ा है और मुझे देख रहा है। मुझे ध्यान आया कि मेरे गले से पल्ला थोड़ा सरक गया, लेकिन इससे पहले मैं वो ठीक करती मैंने गौर किया कि वो एकटक मेरी आंखों की तरफ देख रहा है। पता नहीं क्यों, चाहकर भी मैं उससे नज़रें नहीं हटा पाई। मेरे दिल में एक धक-धक सी होने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, शोभा ऑफिस से बाहर आई और चलो कहा। शोभा ने उस लड़के को कहा जो अब मुझे ही देख रहा था। शोभा मेरे पास आकर बोली, दीप्ति, मुझे आज शाम की पार्टी की तैयारी करने के लिए जल्दी निकल आना है। ऑफिस आप लोग कब कर देंगी प्लीज़? मैंने हाँ में सिर हिलाया क्योंकि उस लड़के की नज़रें अब भी मुझ पर जमी हुई थी। मुझे पहले से ही पता था कि शोभा के परिवार के नए बंगले की पूजा शाम को है और रात में बड़ी पार्टी भी है। शोभा ने मुझसे कहा, आप अपने हस्बैंड के साथ 9 बजे तक ज़रूर पहुँच जाइएगा। मैंने लड़के से नज़रें बचाते हुए जवाब दिया, शोभा, वो हम आते लेकिन मेरे हस्बैंड दिल्ली गए हुए हैं और देर रात को लौटेंगे। शोभा ने कहा, ओह। फिर वो आगे बोली, लेकिन आप तो आ सकती हैं ना, हमारा घर तो स्टेशन और आपके घर के रास्ते में ही है। आपके हस्बैंड आपको पिक करते हुए चले जाएंगे। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, शोभा ने कहा, देखिए अब बहाने मत बनाइए दीप्ति, अगर आप नहीं आई तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये देखकर मेरे पीछे खड़ा लड़का धीरे से हंस पड़ा। तुम क्या कर रहे हो? शोभा ने पलटकर डांटा और फिर याद करके मुझसे कहा, ओह बताना भूल गई, ये मेरा देवर है सारांश, मुंबई में पढ़ता है, आज पूजा के लिए आया है। सारांश ने धीरे से अपना दायां हाथ हाई करने के लिए हिलाया। उसकी आंखें अब भी मेरी तरफ ही देख रही थी और जवाब में मैं बस मुस्कुरा दी। शोभा और सारांश चले गए। मैंने कनखियों से उसे जाते हुए देखा तो पाया कि वो अब भी मुझे ही देख रहा था। मैंने झट से अपनी नज़रें नीची कर ली, लेकिन मुझे पता था कि जब तक मैं आंखों से ओझल नहीं हुई, उसकी नज़र मुझ पर ही थी। कुछ बात तो थी सारांश में, जो मेरे होठों पर कुछ देर के लिए एक हल्की सी मुस्कान छोड़ गई। घर जाकर जब मैंने पति को कॉल करके मेरी दुविधा बताई, तो उन्होंने कहा कि तुम चली जाना, मैं पिक कर लूँगा आते हुए। मैं पार्टी के लिए कपड़ों को लेकर थोड़ी संशय में थी, तो उन्होंने ही उनकी फेवरेट साड़ी पहनने का सुझाव दे दिया। काले रंग की स्टाइलिश शिफॉन की साड़ी थी, जो उन्होंने कुछ साल पहले मुझे गिफ्ट की थी। उन्हें मैंने बताया कि उस साड़ी का मैचिंग ब्लाउज थोड़ा टाइट होगा, लेकिन वो अड़े रहे। जब मैंने ट्राई करके फ़ोटो भेजी, तो उनकी आंखें ब्लाउज की बनावट के कारण सतनों के बीच बनी घाटी से हटी ही नहीं। पति ने किसी सड़क छाप आशिक की तरह कहा, तुम मिलो आज रात, फिर ढीला करता हूँ तुम्हारा ब्लाउज। मैं शर्मा कर रह गई, लेकिन उनके कॉल काटने के बाद ना केवल मैंने और साड़ी और ब्लाउज पहनी, बल्कि अपने आप को देख भी रही थी। एक पतली और झीनी पैंटी और मैचिंग ब्रा के साथ साड़ी बहुत सेक्सी लग रही थी। वापस आने के बाद उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पार्टी से पिक करने के बाद हम दोनों जैसे ही घर में घुसेंगे वो मुझ पर टूट पड़ेंगे, मैं पूरी तैयार हुई थी। फिर मैंने कैब बुलाई, खुद को शॉल से ढका और बाहर निकल गई। पार्टी शुरू हो चुकी थी। शोभा ने मेरा शॉल ले लिया और थोड़ी देर के लिए मुझे देखती ही रह गई और कहा, आह अगर मैं मर्द होती तो आपको अभी दबोच लेती, और हम दोनों हंस पड़ी। उस मेरा शॉल संभाल कर बाकी सहेलियों की शॉलों के साथ रख दिया और मुझे उनके पास छोड़कर दूसरों की तरफ चली गई। हम सब व्यंजनों का आनंद लेते हुए शोभा के आलीशान बंगले को निहारने में मशगूल हो गए। थोड़ी देर में वो अपने देवर सारांश के साथ वापस आई। वो उसे सबसे परिचित कराने के लिए लाई थी। सारांश ने सबसे विनम्रता से हाथ मिलाया और आखिर में मुझसे भी। उसकी आंखें मेरी नज़रों से फिसलकर मेरी घाटियों पर भटकी। वो खुद में इतना खोया था कि मेरा हाथ छोड़ना भूल ही गया। शोभा ने चुटकी ली, सारांश मुंबई में खूबसूरत लड़कियाँ नहीं हैं क्या? मैं और सारांश दोनों झेप गए। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। इससे पहले कि कोई और मजाक करे, पार्टी के डीजे ने म्यूजिक बदल दिया। शोभा ने सबको कहा, अपने अपने पतियों को बुलाओ, पेपर डांस खेलेंगे। पेपर डांस में कपल अखबार के ऊपर डांस करता है और हर राउंड के बाद वो अखबार और मोड़ दिया जाता है, जिससे उन्हें और करीब आकर नाचना होता है। जो कपल सबसे आखिरी तक टिकता है वो जीत जाता है। मुझे छोड़कर बाकी सभी सहेलियां अपने पति या बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, इसलिए वो उन्हें लेने चली गई और पीछे रह गए मैं और सारांश। हम दोनों दूसरों को देख जरूर रहे थे, लेकिन आंखों के नीचे बीच बीच में एक दूसरे की तरफ भी देख रहे थे। सबके अपनी जगह लेने के बाद भी एक अखबार बचा हुआ था। शोभा ने मुझे और सारांश को देखा और कहा, तुम दोनों क्यों नहीं आ जाते? सारांश मेरी तरफ मुड़ा और अपना दायां हाथ बढ़ाकर पूछा, भाभी अगर इजाज़त हो तो। उसकी मुँह से भाभी सुनकर ज़रा अजीब लगा, क्योंकि आंखें उस शब्द से इत्तेफाक नहीं रखती थी। मैं भी सोच में थी कि शोभा धमक पड़ी और कहा, तुम्हारे पति नहीं है यहाँ तो कोई डर नहीं है। सारांश ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, उनके पति को मुझसे डरने की ज़रूरत भी नहीं है। पता नहीं उसकी बात में ऐसा क्या था कि मेरा हाथ अपने आप ही उसके हाथ की ओर चला गया। अखबार छोटा था,
हमें ना केवल नज़दीक खड़ा होना था बल्कि धीरे धीरे नाचते हुए अखबार से बाहर जाने से भी बचना था। इसी जद्दोजहद में न जाने कब हमारे हाथ एक दूसरे के कंधे पर चले गए। मेरी आंखें उसकी आंखों की जकड़ से बचने की कोशिश में हर तरफ घूम रही थी। अगली धुन पर अखबार एक और बार मोड़ा गया जिससे जगह और छोटी हो गई। मैंने नजरें बचाकर शोभा को देखा लेकिन वो खुद में ही मशगूल थी। अगले ही पल मुझे थोड़ी नम उंगलियां मेरी कमर के नग्न भाव में अटखेलियां करती हुई महसूस हुई। एक टीस सी मेरे सीने में उठी। मैंने उसकी आंखों में झांका और फिर और कहीं नहीं देख पाई। उसकी नज़र बहुत निडर थी, जैसे वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है, एक अधिकार के साथ कर रहा है। किसने कहा ख्वाब सच नहीं होते। सारांश ने अपनी हथेलियों को मेरी कमर से धीरे धीरे नीचे ले जाकर मेरे कुल्हों पर रोकते हुए कहा। मेरे अंदर कुछ पिघलने सा लगा। मन के एक कोने में मुझे मालूम हुआ कि उस पल में मैं मेरे पति के साथ दगा कर रही हूँ, लेकिन कुछ और था जो मुझे उसकी पकड़ में बांधे हुए था। संगीत रुका और जैसे मैं एक गहरी नींद से जागी। अनजाने में ही मेरा पैर अखबार से बाहर चला गया और हम खेल से बाहर हो गए। मैं झेप कर एक कोने की तरफ खड़ी हो गई। आप ठीक तो है ना भाभी, सारांश ने पीछे से आकर पूछा। मुझे कुछ जवाब नहीं सूझ रहा था। मैंने कहा हाँ, बस वो मुझे वॉशरूम जाना है, आइए मैं दिखाता हूँ। हॉल वाले टॉयलेट के पास उसके पिता के कुछ दोस्त खड़े थे जो सारांश से पहले इधर उधर देखा। सारांश ने कुछ सोचकर कहा, आप मेरे कमरे का वॉशरूम यूज़ कर लीजिए, इस तरफ तो मेहमान खड़े हैं। इससे पहले कि मैं उसकी बात का जवाब दे पाती, वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और मुझे भी उसके पीछे जाना पड़ा, क्योंकि अब मैं उसे नहीं कह सकती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सारांश का कमरा दूसरे माले पर था। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और एक तरफ इशारा करके अपने बिस्तर पर बैठ गया। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा बंद किया, बाहर से सारा शोर भी बंद हो गया। मेरे दिल की धड़कनें मुझे सुनाई देने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सारांश से दूर जाने की कोशिश करते करते कैसे मैं उसके साथ एक कमरे में अकेले आ गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सेक्स कहानी के इस भाग ने आपके अंदर सेक्स की ज्वाला को भड़का दिया होगा। अगले भाग में मैं आपको वो मसाला भी बताऊंगी जिसके लिए आप इस कहानी के पटल पर आते हैं। आपकी भाभी।